नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को ये संदेश दिया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में किसी भी आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे चरण में श्री सिंह ने कहा कि देश अब पुरानी मानसिकता के साथ आगे नहीं बढ़ता, जहां हमारी धरती पर आतंकवादी हमले होते रहें और हम केवल कूटनीतिक बयान जारी करते रहें। उन्होंने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र और भारत को सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बताया।
हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने भी समय समय पर यह साबित किया है कि वह केवल शांति काल की जरूरतों के लिए नहीं, युद्ध काल की तेज आपूर्ति के लिए भी वह तैयार है। हालांकि उस बीच हमें न्यूक्लियर हमले तक की धमकी दी गई, लेकिन हम उस ब्लफ में नहीं आए। हमने उन धमकियों को नकारते हुए, कोई तवज्जो न देते हुए वही किया जो करना था, जो राष्ट्रहित में जरूरी था, और यही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी नई दुनिया का नया भारत।
पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच हो रहे तीव्र परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश को एक ऐसी प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और गरिमा प्राप्त हो, जहां कोई भी मतभेद विवाद का रूप ना ले और कोई भी विवाद विनाश का कारण ना बने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से विस्तारित श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। अभी ये रेल सेवा श्रीनगर और श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा के बीच संचालित हो रही है, जिसे जम्मू तवी तक बढ़ाया जा रहा है। विस्तारित मार्ग पर नियमित सेवाएं शनिवार से शुरू होंगी। इस रेलगाड़ी में अब 8 के बजाय 20 कोच होंगे। रेलगाड़ी को विशेष से क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण और अत्यधिक ठंड की स्थिति में चलने के लिए डिजाइन किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लद्दाख दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल से शुरू हो रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु इस प्रदर्शनी में भाग भगवान बुद्ध के अवशेषों की पूजा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 5 से 7 मई तक भारत की राजकीय यात्रा पर होंगे। इसी महीने राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री लाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वे बोधगया और मुंबई भी जाएंगे। ये यात्रा भारत वियतनाम रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। अमरीकी सेना ने घोषणा की है कि उसके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी के तहत 42 जहाजों को ईरान के बंदरगाहों में प्रवेश या निकासी करने से रोका है। अमरीकी सेंट्रल कमांडर ब्रैड कूपर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 41 टैंकर अब भी खड़े हुए हैं। इनमें लगभग 6.90 करोड़ बैरल तेल है, जिसका संभावित राजस्व 6 अरब अमरीकी डॉलर है। इससे तेल निर्यात से लाभ कमाने की ईरान की क्षमता बाधित होगी। ईरान ने इसकी निंदा करते हुए इसे समुद्री डकैती की कार्रवाई बताया है। ईरान ने अमरीका द्वारा समुद्री कार्रवाई जारी रखने पर व्यावहारिक और अप्रत्याशित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। कतर की राजधानी दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने सूचित किया है कि भारतीय एयरलाइंस दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी सेवाएं फिर शुरू करने की योजना बना रही हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो कल से दोहा और भारत के बीच उड़ानें फिर शुरू कर रही हैं। यात्रियों को उड़ान संबंधी जानकारी के लिए एयरलाइंस से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1065 अंक फिसलकर 76,432 पर, जबकि निफ्टी 331 अंक लुढ़ककर 23,846 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 244 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में ही विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।